بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. ناظرین، السلام علیکم. علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. مولا الموحدین امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شب شہادت کی آمد کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے اقوام متحدہ کی جانب سے صہیونی حکومت کے غزہ پر کیے جانے والے جرائم کی مذمت. اس موضوع پر گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، تو ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. جناظرین، آج 7 جولائی ہے اور گزشتہ برس یعنی 8 جولائی کو ٹھیک 1 سال قبل، اور یہی ماہ مبارک رمضان کے ایام تھے جب غزہ کے روزہ دار مسلمانوں، نیت مظلوم اور بے گناہ شہریوں پر صہیونی حکومت نے ظلم کے پہاڑ توڑنا شروع کیے تھے. 50 روز تک صہیونی حکومت نے غزہ کے نیت اور بے پناہ اور بے سہارا شہریوں پر آگ، بارود اور گولے برسائے، اور جس قدر ممکن ہو سکتا تھا اس نے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا، وحشیانہ جرائم کا ارتکاب کیا. بچوں اور خواتین کو چن چن کر اس نے مارنے کی کوشش کی. سینکڑوں کی تعداد میں معصوم بچوں کو اس نے شہید کیا. اطلاعات یہ ہیں کہ 3 دن کے 9 مولود سے لے کر 80 سال کے سن رسیدہ افراد تک کو اس نے ہزاروں کی تعداد میں شہید اور زخمی کیا. لیکن 1 سال لگ گیا عالمی برادری اور عالمی اداروں کو یہ سمجھنے اور یہ کہنے میں کہ 50 روزہ جنگ میں صہیونی حکومت نے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا یا بے گناہ شہریوں کا قتل عام کیا. گزشتہ جمعے کو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے اپنی ایک رپورٹ میں صہیونی حکومت پر یہ الزام لگایا کہ اس نے گزشتہ برس یعنی 8 جولائی سے شروع ہونے والی جارحیت جو کہ 50 روز تک طول کھینچی، اس میں اس نے لوگوں کا، عام شہریوں کا قتل عام کیا. اس نے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں نے ان شہریوں کا قتل عام کیا ہے یا جو لوگ ان شہریوں کے، غزہ کے شہریوں کے قتل عام کے ذمہ دار ہیں، ان پر مقدمہ چلایا جایا نہ چاہیے. امریکہ نے ایک بار پھر صہیونی حکومت کی پشت پر کھڑے ہو کر صہیونی حکومت کی حمایت کا اعلان کیا اور ووٹنگ کے خلاف یعنی قرارداد کے خلاف ووٹ دیا، جبکہ بعض ملکوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. لیکن اس کے باوجود واضح اکثریت سے صہیونی حکومت کو 50 روزہ جنگ غزہ کا ذمہ دار قرار دے دیا گیا. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، مگر ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
بین الاقوامی سرگرمیاں اس بات کی غمازی کر رہی ہیں کہ فلسطینی عوام پر اسرائیل کے مظالم کو دنیا نے فراموش نہیں کیا ہے. فلسطینی عوام پر صہیونی حکومت کے مظالم، خاص طور پر غزہ کے خلاف 50 روزہ جنگ کے دوران کیے گئے وحشیانہ جرائم کی عالمی پیمانے پر مذمت جاری ہے. اس ضمن میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل نے غزہ میں اسرائیلی سفاکیت کی مذمت کی ہے. جمعے کو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل نے واضح اکثریت سے ایک قرارداد کی منظوری دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ صہیونی حکومت نے سن 2014 کے موسم گرما میں غزہ میں قتل عام کے دوران عام شہریوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا تھا. اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل نے غزہ کی پٹی پر حملوں کے دوران عام شہریوں کے قاتلوں پر مقدمہ چلانے کا مطالبہ بھی کیا. قرارداد میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ صہیونی حکومت نے ان حملوں میں وسیع پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے. امریکہ صرف ایک ایسا ملک ہے کہ جس نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل میں اسرائیل مخالف قرارداد کے خلاف ووٹ دیا ہے. واضح رہے کہ گزشتہ برس 8 جولائی کو اسرائیل نے غزہ پٹی پر فضائی حملوں کا آغاز کیا تھا جو 50 روز تک جاری رہے. غزہ پر اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں سینکڑوں بچوں اور خواتین سمیت 2200 سے زائد فلسطینی شہید اور 3000 بچوں سمیت تقریباً 11000 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ غزہ کے خلاف گزشتہ دو جنگوں کی مانند تیسری جنگ کے بھی صہیونی حکومت پر سیاسی اثرات مترتب ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی مستقل تحقیقاتی کمیٹی نے بھی رواں برس 22 جون کو غزہ کے خلاف اسرائیل کی 50 روزہ جنگ سے متعلق اپنی رپورٹ شائع کر کے اعلان کیا کہ اس جنگ میں صہیونی حکومت نے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ فلسطینیوں کے قتل عام جیسے صہیونی حکومت کے اقدامات انسانیت کے خلاف جرائم اور نسل کشی کا واضح مصداق ہیں۔ حالیہ برسوں میں فلسطینیوں پر صہیونی حکومت کے مظالم نے عالمی پیمانے پر لوگوں کے دلوں کو زد پہنچائی ہے۔ صہیونی حکومت کی پالیسیاں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ یہ غاصب حکومت اپنے جرائم میں کسی طرح کی محدودیت کی قائل نہیں ہے، اور مغربی حکومتوں کی پشت بنائی سے فلسطینی عوام پر اپنے مظالم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ صہیونی حکومت کے مظالم سے متعلق بین الاقوامی برادری کے اجلاسوں کا انعقاد اور اقوام متحدہ اور اس کے ذیلی اداروں کی جانب سے بڑی تعداد میں اس کے خلاف قراردادوں کی منظوری سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ دنیا کو ایک شیطان صفت حکومت کا سامنا ہے۔
جی ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھیوں کے ترتیب کردہ رپورٹ ملاحظہ فرمائیے۔ اب چلتے ہیں سیدھے لندن اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں سیاسی امور کے ماہر جناب عمر آفریدی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
آفریدی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اتنی بھیانک جارحیت، جرائم اور وحشیانہ اقدامات، دل دہلا دینے والے انسانیت سوز اقدامات، کیا ان کی تحقیقات کے لیے ایک سال کا عرصہ لگنا چاہیے تھا؟
یقیناً وقت تو لگا اس میں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ تحقیقات بہرحال مکمل ہوئیں اور ایک ایسی رپورٹ آئی سامنے جس سے یہ ایک انکوائری جو تھی، یہ جو تحقیقات تھی، یہ غیر جانبدار تھی، انڈیپینڈنٹ انکوائری تھی، اور اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ جارحیت ہوئی ہے، اسرائیل نے جارحیت کی ہے۔ اور اس میں جو سفارشات ہیں، اس میں سب سے اہم سفارش اس رپورٹ میں یہ کی گئی ہے کہ جن افراد نے، جن حکام نے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے، انہیں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ یا جو جرائم کی عالمی عدالت ہے، ان کا سامنا کرنا چاہیے اور ان کو سزا ملنی چاہیے۔ تو اگرچہ وقت لگا اس میں، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات خوش آئند ہے اور بڑی اچھی پیش رفت ہے کہ کم از کم وہ رپورٹ آئی، اور اس رپورٹ میں وہ حقائق سامنے آئے ہیں جو کہ جس طرح میں نے کہا کہ وہ ایک غیر جانبدار، ایک آزاد انکوائری کمیشن تھا جس نے رپورٹ مرتب کی تھی۔ اگرچہ اسرائیل کا اپنا موقف ہے اس میں، لیکن بہرحال اسرائیل کو تعاون کرنا چاہیے تھا۔ اگر اس کے پاس کچھ اس طرح کے شواہد تھے کہ اس کے خلاف جارحیت ہوئی ہے، تو وہ پیش کرنے چاہیے تھے، اور کسی حد تک انہوں نے پیش کیے بھی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے کہ مزداق جو ہے، یہ ایک اچھی پیش رفت ہے۔
جی، آپ اسٹوڈیو موجود رہے گا، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں ہندوستان کے سینئر اور سرکردہ تجزیہ نگار اور صحافی جناب قمر آغا صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ قمر آغا صاحب، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا اور یقیناً آپ نے رپورٹ بھی دیکھی ہوگی کہ جو سفارشات ہیں اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے کہا ہے کہ جو لوگ غزہ کے 50 روزہ ہولناک واقعات اور اس میں ہونے والے قتل عام کے ذمہ دار ہیں، یعنی اسرائیلی حکام، ان کو مقدمات کا سامنا کرنا چاہیے اور ان کو عالمی عدالت میں پیش کیا جانا چاہیے۔ کون ہے جو پیش کرے گا؟ کیا اقوام متحدہ میں فی الوقت اتنا دمخم ہے کہ وہ اسرائیلی حکام کو، جو اس کے ذمہ دار ہیں، وہ عالمی عدالت انصاف کے کٹہرے میں لے جا کر کھڑا کرے؟
دیکھیے، یہ کہنا تو مشکل ہے کہ وہ وہاں تک پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے، لیکن ایک چیز ہے کہ پورے دنیا کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ اسرائیل نے جس طرح کی جاہریت وہاں پہ کی تھی، کتنے بے گناہ لوگوں کو مارا تھا۔ ابھی تک ان کو یہ ساری خبریں چند سورسز سے ملتی تھیں، اب یہ ہے کہ ایک بہت کریڈیبل آرگنائزیشن ہے جس نے یہ انکوائری کنڈکٹ کی، जैसा कि पहले बताया गया इंडिपेंडेंट इंक्वायरी थी और उसने इनको पहली दफ़े, इंक्वायरी करने वाले भी इसमें ज़्यादातर यूरोपियंस थे जिन्होंने पहली दफ़े इसराइल को बताया कि दुनिया को बताया कि इतने लोग मरे, ज़्यादातर बेगुनाह लोग मरे। फिर उसके बाद ये भी है कि पब्लिक ओपिनियन जो है पूरी दुनिया में बिल्कुल बदलती जा रही है, ख़ासतौर से यूरोप में। तीसरी दुनिया के लोग तो पहले भी फिलिस्तीन के साथ खुल के खड़े हुए थे, लेकिन अब ये कि महज एक ही मुल्क ने उसका खुल के साथ दिया, वो अमेरिका था। बाकी जो यूरोपियन उसके एलाइज थे इसराइल के, उसमें उन्हीं ने भी उनका साथ नहीं दिया। ज़्यादातर लोगों ने या तो वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया या एब्सटेन किया। फ्रांस और जर्मनी जैसे मुल्क ने भी एब्सटेन किया, कुल 5 लोगों ने एब्सटेन किया, 41 लोगों ने इस रिपोर्ट के फेवर में वोट दिया, महज अमेरिका ने इसको इसके खिलाफ मुखालफत की। तो ये बहुत दिनों तक जो अमेरिकन पॉलिसी है इसराइल को बचा के रखना, मैं समझता हूँ ये नहीं चल पाएगी। यूरोप के अंदर भी पब्लिक ओपिनियन बदल रही है बहुत तेज़ी से, और ज़्यादातर लोग जो हैं अब इसराइल की जो दूसरी चीज़ ये भी है कि हालात बहुत बदल चुके हैं। वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका अब इसराइल पे उस तरह डिपेंडेंट नहीं है कि इसराइल ही उनका नेशनल इंटरेस्ट सर्व करे। हाँ, कुछ साल पहले तक ज़रूर था, अब अमेरिकन ट्रुप्स खुद मिडल ईस्ट में आ गए हैं। अब वो अमेरिका को किसी दूसरे मुल्क के सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है अपने इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, और वही नहीं बल्कि उसके ट्रुप्स तकरीबन हर मुल्क में मौजूद हैं और वो जो जी चाह रहा है कर रहे हैं और ख़ुद डायरेक्ट कर रहे हैं। तो अमेरिका पे उनका दारुमदार इसराइल के ऊपर अब नहीं रह गया है। तो वक्त बदल रहा है, और मैं समझता हूँ कि एक ऐसी वक्त आ रहा है कि जिसमें इसराइल बहुत दिनों तक इस तरह की हरकतें करके जो निकल जाता था, बच जाता था, वो मुश्किल होगा उनके लिए। ये सही है कि अभी भी ये रिपोर्ट जाएगी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पे भी इसके ऊपर मुकदमा भी चलेगा। हो सकता है इसराइल इस दफ़े बच जाए, लेकिन ये कि जो उनका तरीक़ा था कि हर 6 साल 8 साल पर एक जंग करके गाज़ा का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है या वेस्ट बैंक का है उसको तबाह बर्बाद कर देने का, ये पॉलिसी में उनको मुश्किल आने की आएगी। बहुत से लोग हैं जो खुल के इसराइल की मजम्मत कर रहे हैं, सामने आ रहे हैं, जो उसके पहले एलाइज थे। वक्त बदल रहा है, मैं समझता हूँ कि इसराइल को इस बात को समझना होगा।
जी, बहुत शुक्रिया आपका। चलते हैं इस्लामाबाद, जहाँ पर टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं CR शमसी साहब, पाकिस्तान के एक और सीनियर तजनिगार। अस्सलाम वालेकुम जनाब। CR शमसी साहब, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? जी, बताया ऐसा है कि हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही। उमर अफरीदी साहब, अमेरिका ने ज़ाहिर है कि इस करारदाद की मुखालफत में वोट दिया, यानी यूँ कहा जाए कि अकेले उसने सहयोगी हुकूमत का साथ दिया। क्या वजह है कि पूरी आलमी बरदारी एक तरफ और अमरीका सहयोगी हुकूमत के जराइम की हमायत में एक अकेला तना पड़ गया और उसने इसको तरजीह भी दी?
देखें रिजवी साहब, अगर आप देखें तारीख को देखें तो अमेरिका तो हमेशा ही इसराइल का साथ देता रहा है, और उनके वो ज़ाहिर है अपने मफादात हैं, सियासी मफादात हैं और अस्करी मफादात, फ़ौजी मफादात हैं। पहले भी उन्होंने इस तरह की जब करारदादें आई हैं या इसराइल के ख़िलाफ़ बैनुल अक्वामी बरादरी मुत्तहिद हुई है, तो अमेरिका जो है वो एक बिल्कुल अलग लाइन लेके एक अलग रास्ता उसने इख्तियार किया है। यहाँ अहम बात जो है मेरी नज़र में वो ये है कि अमेरिका ने रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं कहा, अलबत्त जो मजम्मती करारदाद थी उसकी मुखालफत की है। तो रिपोर्ट पर तो अब तक कम से कम खामोशी है, यानी इसका मतलब यह है कि जो रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है, जितने फ़लस्तीनियों की हलाकत की बात हो रही है या जो ताकत का यानी गैर मुतनासिब इस्तेमाल जो किया गया है, उस पर तो वो खामोश है। सिर्फ ये कि मुजम्मत करने की उसने गालिबन वो जो इसराइल की लाइन है, इसराइल ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये मुतवाजिन नहीं है करारदाद, इसमें हमास और जो दीगर फ़लस्तीनी ग्रोह हैं जिनके बारे में वो इल्ज़ाम लगाता रहा है कि ये शिद्दत पसंदी करते हैं और बकौल इसराइली हुकूमत के दहशतगर्दी में मुलविस हैं, उनकी उस तरह से मुजम्मत नहीं की गई। तो अमेरिका का बहरहाल मौक़िफ हमेशा से वाज़ रहा है कि इसराइल के मामले पे हमेशा वो इसराइल की तरफदारी करेगा, वहाँ वो गैर जानिबदार नहीं रह सकता। उसके अपने सियासी, जिस तरह मैंने कहा, सियासी और अस्करी मफादात हैं
जी।
एक बहुत बड़ी लॉबी है, आपको आप जानते हैं कि इसराइल की बहुत बड़ी लॉबी अमेरिका में काम कर रही है, जो वहाँ के हुकूमत के अंदर भी है, जो वहाँ की कांग्रेस के अंदर भी है, और जो ज़राए अबलाग में भी उनके लिए काम करते हैं वो, और ना सिर्फ वहाँ है बल्कि यूरोप में भी है। तो अब उससे शायद वो नहीं निकल पाते, वहाँ की हुकूमत नहीं निकल पाती, और वो मजबूर होती है कि इसराइल के ख़िलाफ़ अगर कोई बात हो तो फिर वो अपना रद्द अमल इस अंदाज़ में ज़ाहिर करते हैं कि वो ऐसी करारदादों की मुखालफत करते हैं।
जी बहुत शुक्रिया कमर आगा साहब। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यूरोपीय मुल्कों ने भी इस करारदाद के हक़ में उड़ दिया, यानी इसराइल की जो मजम्मती जो करारदाद थी उसके हक़ में उड़ दिया, यानी इसराइल की गोया मजम्मत की, और अमेरिका ने हिमायत की इसराइल की, यानी करारदाद के ख़िलाफ़ उड़ दिया। तो क्या ये समझा जाए कि अब इसराइल के मामले पर यूरोप और अमेरिका में कहीं फासला और खलीज जो है पैदा होती जा रही है?
मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा खलीज है। देखिए, जैसा कि अभी अफरीदी साहब बता रहे थे कि मफादा अभी भी दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि वो यही चाहते हैं कि इसराइल सबसे ताकतवर मुल्क अरब उस पूरे खत्ते में बना रहे, इसमें कोई फ़र्क अभी नहीं आया है ना यूरोप ना अमेरिका की सोच में। दूसरी बात ये भी है, दूसरी तरफ ये भी है कि जो मुसलमान हैं इनकी कोई बारगेनिंग कैपेसिटी नहीं है, ख़ासतौर से अरब मुल्कों की, इसराइल को लेके या दूसरे किसी भी मसले पे लेके कोई बारगेनिंग कैपेसिटी न होने की वजह से इसका भी पूरा फ़ायदा उठाते हैं। किसी इतनी बड़ी जंग हुई थी, इतने लोग मरे थे, जिस तरीके से अरबों को इस मसले को उठाना चाहिए था उन्हीं ने नहीं उठाया, जिस तरीके से कम्पेन होनी चाहिए थी साल भर वो कम्पेन नहीं हुई। एक तो डेमोक्रेसी नहीं है इन मुल्कों में, जमहूरियत न होने की वजह से वहाँ पर इस तरह के टीवी जैसा यहाँ पे हम इस वक्त डिबेट कर रहे हैं, किसी भी अरब मुल्क में आप डिबेट नहीं कर सकते, इस मसले पे बात नहीं कर सकते, जुलूस नहीं निकाल सकते, तो ये सब हैं। और वहाँ पे कोई लोग बिल्कुल, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे इन पूरे मुल्कों ने मसला फिलिस्तीन को अब बिल्कुल अबंडन कर दिया है, छोड़ दिया है, उस पर कोई बातचीत ही नहीं होती, सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाती है बात, उसको कभी फॉलो अप नहीं किया जाता। अरब लीग की सबमिट हो या दूसरी समिट होती हैं, उसमें अब तो रेजोल्यूशन में भी एक कहीं एक कोने में एक आध जिक्र होता है बहुत छोटा सा, तो ये भी एक वजह है बहुत बड़ी। जब खुद वहाँ के लोग अरब नहीं उसका साथ दे रहे हैं खुल के, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद दूसरे मुल्कों से नहीं। और फिर यूरोप के लोग तो हमेशा से उनका जो एक बड़ा एलीट है, जो बड़ा ग्रुप है वहाँ पर, रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट है, उसके बड़े ज़बरदस्त रिश्ते हैं इसराइल से, इन्हीं लोगों ने इसराइल के बनाने में मदद की थी, इसराइल को बनाया, और इन्हीं लोग यही लोग हैं जो वहाँ पे भी पावर में हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है अमेरिका में। जैसे कि अफरीदी साहब ने अभी बताया, ज्यूइश लॉबी जो है वो भी इंतहा पावरफुल है, उसके पास पैसा भी बहुत है, और वो वहाँ के ख़ासतौर से मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री को कंट्रोल करती है, और उसके ज़रिए हर चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। दूसरे लोगों का ना तो कोई मीडिया है इंडिपेंडेंट, ना कोई बड़ा इनके बैनर्स हैं वहाँ पे, ना इनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये एक बहुत बड़ी दुश्वारी है फिलिस्तीन को, इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। उसके जो लोग हैं, पहले नॉन अलाइन मूवमेंट था वो एक बहुत स्ट्रांग था और उसकी एक सपोर्ट थी, अब नॉन अलाइन मूवमेंट भी पोस्ट कोल्ड वॉर एरा के अंदर बहुत कमज़ोर हो गया है, तो उस वजह से थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज जो नॉन अरब थी वो भी कमज़ोर हो गई हैं। तो ये सारी दुश्मनियाँ हैं जिसका पूरा फ़ायदा इसराइल उठा रहा है, और लगातार इस तरीके से जो उसके जुल्म है फिलिस्तीनियों के ऊपर वो बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए कि उसको मालूम है उसको किसी। फिर तीसरी चीज़, एक चीज़ और बहुत है कि जो इंटरनेशनल ऑर्डर है पूरा, यूनाइटेड नेशंस या इंटरनेशनल मोनिट्री या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ये भी वही लोग कंट्रोल करते हैं, वेस्ट के नेशंस कंट्रोल करते हैं। यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के जो का जो वजूद है उसके अंदर वो जानता है कि उसका कोई रेजोल्यूशन उसके ख़िलाफ़ नहीं पास हो सकता, अगर आएगा तो उस पर अमेरिका यूरोप के देश जो हैं वो वीटो कर देंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसकी कभी एड और ग्रांट्स जो होती हैं उसमें कमी नहीं आने लगेंगी, कोई सैंक्शंस उसके ऊपर नहीं लग सकते चाहे वो कितना ही जुल्म कर ले। तो ये सारी चीज़ें हैं जो तीसरे वर्ल्ड के लोग या या इसराइल के या अरब्स जो हैं, या उसके अलावा खासतौर से फिलिस्तीनियों को इसका पूरा नुकसान उठाना पड़ रहा है, लगातार उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसकी उसका उनको कहीं भी कहीं जस्टिस नहीं मिला, किसी तरफ से भी नहीं मिला, न उनकी बात कोई सुन रहा है न उनकी बात, सिवाय एक ईरान एक ऐसा देश है जो उनका काज को आलमी लेवल पे चैंपियन करता रहता है।
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँगा। एक बार फिर चलते हैं इस्लामाबाद, जहाँ पर टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर तर्ज निगार जनाब सी आर शमसी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
जी वालेकुम सलाम।
जी शमसी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी जो अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल की रिपोर्ट आई है और उसने जो सिफारिशात पेश की हैं, उसमें ये कहा गया है कि गज़ा के शहरियों के कत्ल आम के जो ज़िम्मेदार हैं उन पर मुकदमा चलाया जाए। ये रिपोर्ट आप क्या समझते हैं कि इसराइली मजालिम को उजागर करने और ख़ुद सहयोनी हुकाम पर दबाव डालने के लिए किस हद तक मुअसर वाक़ हो सकती है?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि बहुत देर की मेहरबान आते आते एक साल लगा एक वैश्याना जो खेल हुआ 50 दिनों तक, और जिस तरह गजा के शहरियों पर और एक मासूम बच्चों पर एक सफाकाना कोई लफ्ज़ नहीं है उस बर्बरियत का जो खेल खेला गया। और असल बात तो यह है कि उन 50 दिनों में भी जो आलमी ज़मीर था वो उस तरह सोया रहा जिस तरह कुछ हो नहीं पा रहा। लेकिन आज जो जो रिपोर्ट इस जुमे को मंजूर हुई है यूनाइटेड नेशन की इंसानी हकूक़ कौंसिल ने, मैं समझता हूँ कि ये एक उस तरह तो हम इसको खुशाइंद करार नहीं दे सकते कि कोई ये ऐसी करारदादें पहले भी होती रही हैं, अक़वामे मुत्तहिदा में पड़ी हैं सर्द खाने में, लेकिन एक पहली बार दुनिया के सामने एक जो असल चेहरा है जो इसराइल का जो खेला गया खूनी एक बाब लिखा गया वो लोगों के सामने पूरी दुनिया के सामने आलमी ज़मीर के सामने एक खुलकर पिक्चर आई है और एक पॉइंट आउट हो गया है, एक शवाहिद सामने आ गए हैं। क्योंकि जो फैक्ट फाइंडिंग मिशन था इसकी एक अच्छी बात ये थी कि इसने मौके पे जाके जो मुतासरीन हैं जो उन लोगों को देखा है उनसे मिले हैं वो जख्म देखे हैं वो कब्रिस्तान देखे हैं, उसके बाद एक रिपोर्ट मरतब हुई है। मैं इस रिपोर्ट को एक फलस्तीनियों की और अमन की दुनिया में एक फतह करार देता हूं, लेकिन असल सवाल पैदा होता है कि इस पर अमल दरामद कौन करेगा। और आज भी जब ये रिपोर्ट छप चुकी है दुनिया में इसको वेलकम भी किया जा रहा है, लेकिन आज भी जो 18 लाख गजा पट्टी में जो मैसूर लोग हैं वो एक बड़े कैदखाने की शक्ल में हैं। वहाँ लोग अपनी मर्जी से जी नहीं पा रहे, उनकी इक्तसादी नाकाबंदी हुई हुई है, और आज भी वहाँ जो बेरोजगारी का तनासब है वो बताया जा रहा है 43% से भी बढ़ गया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर अक़वामे मुत्तहिदा ने ये एक बड़ा अच्छा काम किया है एक, और इसमें सिर्फ ये यहाँ तक महदूद रखा गया है कि इससे पहले जो मजालम होते गए उनका तो जिक्र नहीं है, लेकिन 50 दिनों का जुर्म तो साबित हो चुका है, दुनिया के सामने आ चुका है। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो ममालिक जमहूरियत के इंसानी हकूक़ के दावेदार हैं, और देखिए क्या तमाशा है कि इसकी जो मुखालफत में वाहिद वोट आया है वो अमेरिका का है, और ये उसके तजादात का एक खुला तजाद भी दुनिया के सामने आया है। हम कुछ लोग कहते हैं कि ये उसका सियासी फैसला है, उसके इसराइल के साथ मफादात हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अमेरिका के जो आवाम हैं वहाँ भी लोग जो इंसानी हकूक़ की जमहूरियत की बात करते हैं उनके लिए अपनी हुकूमत का ये फैसला यकीनन एक सवाल उठा रहा है। ये तो इसका एक पहलू है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो रिपोर्ट आई है उसमें बहुत सी चीज़ें पहली बार जिनकी जिक्र नहीं होता था, और 41 ममालिक ने, और इस दौरान आपको पता है कि इसराइल के वजीर आजम ने बहुत कोशिश की, उसने बरतानिया से जर्मनी से और जो उसके ऐसे ममालिक हैं जिसके उसके बड़े ताल्लुकात हैं बहुत कोशिश की सफारती सतह पर कि वो इस करारदाद के खिलाफ हक में वोट ना दें, लेकिन ये उसकी शिकस्त हुई है कि दुनिया ने खासतौर पे यूरोप ने उसकी इस हठधर्मी को इस जुल्म को मुस्तरद किया है। अब सवाल अक़वामे मुत्तहिदा की अपनी साख का भी आ गया है कि जहां ऐसी करारदादें जो इंसानी हकूक़ के मुतलक हैं कश्मीर से लेकर फ़लस्तीन की बेशुमार करारदादें, और आज भी यूनाइटेड नेशन के नाक तले वो मजालम पूरी तरह उसी तरह जारी हैं, ठीक है आज ऊपर से हमले बंद हुए हैं, लेकिन जो गजा के फलस्तीन के लोग हैं वो जिस हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं, और आज जो आपने शुरू में रिपोर्ट दिखाई है जिस तरह मासूम बच्चों के लाशें उठाए जा रहे हैं, जिस तरह ये बर्बरियत, ये इंसानियत के मुंह पर एक तमाचा है। और आलमी जमीर, ठीक है एक साल गुजर गया, कई बरस गुजर गए, लेकिन एक हद होती है किसी जुल्म की, और जुल्म जब बढ़ता है तो वो मिट जाता है। ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ जो आपसे पहले दिल्ली से भी बात हो रही थी कि जो इस्लामी उम्मा है उसको आखिर क्या हो गया है कि वो इतनी बेहिस क्यों हो गई है। अगर यूरोपियन बरादरी ने ये बहुत बड़ा एक कदम उठाया है जिसके इजराइल से तल्लुकात भी हैं, तो इस्लामी ममालक जिनका तो फलस्तीन से एक मजहबी खूनी रिश्ते हैं, उनकी ये जो बेहसी है, जो खामोशी है, ये मुजरमाना खामोशी है। आज ये खामोशी तोड़ने का वक्त आया है, और इसका रास्ता यूनाइटेड नेशन की इस जो कौंसिल थी इंसानी हकूक की, उसने एक रास्ता दिया है लोगों को सोचने का, आगे बढ़ने का, और जालम का हाथ रोकने का। अगर आज भी हम किसी जालम का हाथ नहीं रोकते तो इजराइल, जो मैं समझता हूँ कि जो दजाल की दूसरी शक्ल है, उसके मजालम इसी तरह बढ़ते रहे तो दुनिया में कभी अमन कायम नहीं होगा। दुनिया के हंसते बसते शहर खंडर बनते रहेंगे। जिस तरह आज गजा का हम तमाशा देख रहे हैं, वहाँ कब्रिस्तान वसी हो रहे हैं, बच्चों का खून बह रहा है, और हम महज टेलीविजन ड्राइंग रूम सब बैठकर उसको एक एक देखने की हद तक हम रह गए हैं, तो ये बिल्कुल दो टोक अल्फाज में। अगर
बहुत बहुत शुक्रिया अशिया शमसी साहब, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगु जारी है मौजूद मेहमानों से, मगर यहाँ पर एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं। ناظرین ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو آفریدی صاحب کی خدمت میں۔ آفریدی صاحب، جو رپورٹ ہے اس میں واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ صہیونی حکومت اسرائیل نے انسانی حقوق کی کھلی اور وسیع پیمانے پر خلاف ورزی کی ہے۔ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے اگر کسی کے خلاف یہ کہہ دیا جاتا ہے اور یہ رپورٹ جاری ہو جاتی ہے کہ فلاں ملک نے کھلی خلاف ورزی کی ہے، تو بہرحال اس کے خلاف طرح طرح کی پابندیاں لگنے کی بات ہونے لگتی ہیں، تو کیا اسرائیل کے خلاف بھی ایسی کسی پابندی یا تادیبی کاروائی کی توقع کی جائے گی؟
دیکھیے، اس وقت فوری طور پہ تو اس بات کا امکان نہیں ہے، اور اس کا بہت واضح سی بات ہے کہ امریکہ جو اس وقت ایک طرح سے دنیا کی واحد سپر طاقت ہے، وہ اسرائیل کے حق میں ہے اور اسرائیل کے ساتھ ہے، تو یہ تو مشکل ہوگا۔ لیکن یہ جو رپورٹ آئی ہے، یہ ایک بہت، میں نے جس طرح پہلے کہا کہ بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور اب یہ ڈاکیومنٹ آ گیا ہے، یہ دستاویز آ گئی ہے۔ یہ دستاویز اب اپنی جگہ موجود رہے گی، چاہے یہ سرد خانے میں چلی جائے 10 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، یا جتنے عرصے کے لیے بھی، لیکن مجھے یہ توقع ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے نتیجے میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سرگرم ہوگا اور وہ تحقیقات کرے گا، اور ان لوگوں کو جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جنہوں نے کی ہیں غزہ میں، فلسطین میں، یا جنگی جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں، انہیں یقیناً سزا دی جائے گی۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ اس وقت تک زندہ بھی نہ رہے ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ مستقبل میں، یہ چیز مجھے کبھی امید ہے کہ یہ یقیناً ان لوگوں کو یعنی اس بات کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا، اور جو بھی اس وقت سزا ہوگی وہ انہیں دی جائے گی۔ لیکن یہاں اہم جو بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو اسلامی ممالک ہیں، چاہے وہ عرب لیگ ہو کی صورت میں ان کی تنظیم ہو، یا او آئی سی، یا دوسری جو بھی جس فارم جس شکل میں بھی اسلامی تنظیمیں ہیں، یا انفرادی طور پہ ممالک ہیں، उनको अब ये चाहिए कि वो इस बात पे जोर दें, यूरोपीय ममालिक में वो अपना असर व रसूख इस्तेमाल करें। ज़ाहिर है अगरचे इस वक्त उम्मा उलझी हुई है बहुत सारे अपने अंदरूनी मसाइल में, यमन को आप ले लें, शाम को ले लें आप, इराक़ में क्या हो रहा है, अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, तो ये यानी इस्लामी ममालिक ज़्यादातर किसी न किसी खल्फशार का शिकार हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा। ऐसे ममालिक जैसे सऊदी अरब है, ख़ुद ईरान है, पाकिस्तान है, और इस तरह के जो आपके मलेशिया और इंडोनेशिया और इस तरह के बड़े ममालिक हैं, इनको चाहिए कि वो अपना सफारती असर व रसूख इस्तेमाल करें यूरोपीय यूनियन में, दूसरे ममालिक में, और वो कोशिश करें कि ये रिपोर्ट ज़िंदा रहे, सरखाने में ना जा पाए, ये मेज़ पर रहे और इस पर बात चलती रहे और मुतालबा किया जाता रहे कि इस पर अमल होना चाहिए। यानी ये भी काबिले गौर बात है कि इसमें 5 ममालिक ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। राय शुमारी में ऐसे मौके पर हिस्सा ना लेना मुजम्मती करारदाद थी, उसमें हिस्सा ना लेना भी एक तरह से यानी चुप कहते हैं ना कि चुप हो जाना जो है वो भी नीम रजामंदी है। तो एक तरह से मैं तो ये समझता हूँ कि उन्होंने भी उस पर चुप इख्तियार की, तो इसका मतलब है कि वो मजम्मत नहीं करना चाहते थे। और जो मीडिया में जो खबरें आई हैं, इतलात आई हैं, वो यह है कि इसराइली वज़ीर आज़म ने कीनिया और इथोपिया और इस तरह के एक आध और मुल्क को बाकायदा उनके सरबराहान को टेलीफोन किया और उनसे गुजारिश की कि आप इसमें गैर जानिबदार रहें अगर आप मुखालफत नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इस्लामी ममालिक के सरबराहान का ये किरदार है कि वो इन ममालिक से रब्ता करे और उनसे कहे कि भाई ठीक है, वो आपने उस वक्त तो आपने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया, एब्सटेन किया, लेकिन अब जबकि ये करारदाद मंजूर हो गई है, ये रिपोर्ट अब अक्वामे मुत्तहिदा की तैयार है, तो इस पर अमल दरामद में कम से कम हमारा साथ दें और हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं। एक बड़ी एक अचंभे की और हैरत की बात यह है कि हिंदुस्तान जो कि मुखालफत करता रहा है इससे पहले की करारदादों में, इसराइल के मुखालिफ उसका वोट जाता रहा है, इस बार वो एब्सटेन किया उसने, और इससे ये लगता है कि या तो इसराइल और भारत के दरमियान ताल्लुकात अब और करीबतर दोस्ताना ताल्लुकात ज़्यादा हो रहे हैं, या ये कि हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान जो हम देख रहे हैं कि गर्मजोशी नज़र आ रही है ताल्लुकात में हालिया 2-4 बरसों के दौरान, मुमकिन है कि अमेरिका ने उसे कहा हो कि ठीक है तुम अगर मुखालफत नहीं कर सकते खुलकर तो कम अज़ कम
बहुत शुक्रिया आपका,
खामोश रहो, एब्सटेन करो, अपनी राय मत दो।
बहुत शुक्रिया आपका जी। कमर आगा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी जो आफरीदी साहब ने जिस बात की तरफ इशारा किया कि हिंदुस्तान ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया, खुद हिंदुस्तानी गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ इस सिलसिले में?
हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने अभी स्टेटमेंट इशू किया है कि वो उसके जो फिलिस्तीन को लेके जो उसका स्टैंड है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा और ये एक वन टाइम वोट समझा जाए, और हिंदुस्तान के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं जो वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका देखते हैं, वो इस वक्त दौरे पे इसराइल और फिलिस्तीन के गए हैं, एक हफ्ते का दौरा है जिसमें वो वहाँ के आला हुक्कामों से मिलेंगे, और फिलिस्तीन ने भी के जो सफ़ीर हैं यहाँ पे उन्हीं ने भी ये कहा है कि उम्मीद जाहिर की है कि आइंदा इस तरीके की कोई हिंदुस्तान बात नहीं करेगा और हिंदुस्तान उनका जैसा पहले खुल के साथ देता था उसी तरह साथ देगा, और ये भी कहा कि हिंदुस्तान ने हमेशा फिलिस्तीन का साथ दिया है, एक बार अगर इस तरह की हरकत हुई उसको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो मैं समझता हूँ दोनों तरफ से करेक्शन की बातचीत चल रही है। दूसरी बात, यहाँ पर हिंदुस्तान में फिलिस्तीन के लिए एक बहुत बड़ी लॉबी है जो प्रो पैलेस्टाइन है, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मुसलमानों की तो यहाँ कोई ढंग की तंजीम भी नहीं है और ना ही कभी इस तरह की बात फिलिस्तीन के लिए करते हैं, लेकिन नॉन मुसलमानों की यहाँ पे एक बड़ी बड़ी जमात है जो चाहती है, और ज़्यादातर पोलिटिकल पार्टीज़ ऐसी हैं जो फिलिस्तीन के कॉज के लिए कमिटेड हैं, उनका नंबर भी ज़्यादा है और बहुत बड़ी तादाद उनका रखती हैं इस मुल्क के अंदर, तो उनकी हिंदुस्तान की मैं समझता हूँ पोजीशन बिल्कुल अलग है। दूसरी तरफ बात यह है कि इसराइल की जहाँ तक सवाल है, इसराइल अपने जो उसके मकसद हैं उसमें बहुत तेज़ी से आगे के को वहाँ से बिल्कुल उजाड़ देना चाहता है, और वो एक ग्रेटर इसराइल की तामीर में लगा हुआ है, और और इन सभी जगहों को सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय करके, जिस तरीके से गाजा की सीज चारों तरफ से घेर रखा है, एक जेल बना रखा है, वहाँ पे हर चीज़ की कमी है, ऐसी कंडीशंस कर रहा है और लगातार हर 5-6 साल के ऊपर अटैक करता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोबारा निकलें, वही हरकत हो रही है जो 18 जो इसराइल बनने के वक्त में हुई थी कि वहाँ पर आप दहशत करो और फिर दहशत के ज़रिए लोगों को एक्सपेल करो और वहाँ से लोग निकल रहे हैं। वो एक ज्यूइश स्टेट बनाने की कोशिश है जिसके अंदर अरबों का कोई वजूद नहीं रहेगा, और जो अरब वहाँ पे हैं उन अरबों को भी बाहर निकालने की एक कोशिश है, और वो अब अपने को खुल के तमाम दुनिया से चाहता है कि पूरी दुनिया उसको एज ए ज्यूइश स्टेट एक्सेप्ट करे। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर मैं समझता हूँ कि कोई दूसरी कम्युनिटी के लोग नहीं रह पाएंगे, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वहाँ की जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी परेशान नज़र आती है। उसका इसी वजह से वहाँ के पोप फ्रांसिस ने जो अभी उन्हीं का भी एक स्टेटमेंट आया था, और वो भी बराबर इस बात को कह रहे हैं, इसराइल की मजम्मत वहाँ से भी हुई है। तो मैं समझता हूँ इसका ज़रूरत इस बात की है कि इसराइल को रोका जाए इन हरकतों से, और फिर वहाँ पे किसी सूरत से दोबारा से फिलिस्तीन को बनाने में जो काम।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया कमर आगा साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने कीमती वक्त हमें इनायत किया। एक बार फिर चलते हैं सी आर शमसी साहब की खिदमत में। सी आर शमसी साहब, 50 रोज़ा जंग गज़ा की रिपोर्ट तो आ गई, लेकिन फरवरी 2007 से गज़ा को एक खुले जेल खाने में तब्दील किया जा चुका है, और वहाँ के आवाम बुनियादी सहूलतों से महरूम है, बुनियादी हकूक से महरूम है। आलमी इंसानी हकूक के अदारे क्या इसको इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी नहीं समझते, जो ये जालिमाना मुहासरा गजा का गुज़िश्ता 7-8 बरसों से जारी है?
जी बिल्कुल, असल बात यही है कि ये जब एक इक़वामे मुत्तहिदा के एक बहुत बड़े आलमी अदारे ने वहाँ एक केस साबित हो गया है, बज़ाहिर आप सब कह सकते हैं कि ये कमेटी थी उसकी UNO की इंसानी हकूक़ की, लेकिन ये एक बहुत अहम कमेटी थी जो गैर जानबदार लोगों ने एक तहकीक करके तफ्तीश करके तमाम शवाहद उस इज्तमाई कत्ले आम के सामने लाए हैं। अब दो बातें हैं, एक तो इस पर जो करारदाद है इस पर अमल दरामद के लिए पूरी आवाज़ उठाना होगी, और दूसरी जो जिस जानब आपने इशारा किया है वो बहुत अहम है, क्योंकि इस लम्हे मौजूद में भी जब हम ये बात कर रहे हैं गजा का मुहासरा हो चुका है, वो 2007 से एक मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी जेल में वो तब्दील हो चुका है, वहाँ माशी कत्ल हो रहा है, वहाँ आज भी अदवायात जो हैं अस्पतालों में लोग मर रहे हैं और एक लोग भूख से मर रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है, ये जाहिर है कि ये भी इंसानी हकूक की एक बदतरीन शक्ल है जो दुनिया देख रही है। इसमें फौरी तौर पे अब जो यूनाइटेड नेशन है इसकी फिर मैं सवाल उठाऊंगा कि उसकी अपनी साख का ये सवाल है कि उसने जो कुछ देखा है, जो एक फैसला हुआ है, जो एक करारदाद में जो भारी अक्सरियत से कामयाब हुई है, उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए कम अज़ कम फौरी तौर पर जो एक मुहासरा है गजा का, वो मुहासरा ख़त्म कराने के लिए एक आलमी सतह पर आवाज़ उठनी चाहिए। और यहाँ मैं समझता हूँ कि बाज़ ममालक जिन्होंने इस मरहले पर, इस नाजुक मरहले पर अब्सटेन किया है और खामोश हमायत की है इसराइल के मजालम की, उसमें जिस तरह भारत का जिक्र हुआ है कि वो खुद एक बहुत बड़ी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है, मकबूजा कश्मीर जहाँ 7 लाख फौज जो बैठी हुई है, मासूम जो आज़ादी के मतवाले हैं जदोजहद कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि इसराइल को अगर आज ना रोका गया तो उसके कदम बढ़ते चले जाएंगे। और जिस तरह अभी बात हो रही थी कि वो एक ग्रेटर इसराइल तो उसका ख्वाब है ही, लेकिन वो जिस तरह दूसरे इस्लामी ममालक में एक पेनिट्रेशन करके, और हाल ही में जो इंडिया और इसराइल का एक बहुत बड़ा दफाई मायदा हुआ है, और इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं कि जिस तरह अमेरिका और दिल्ली के तलुकात बढ़ रहे हैं, ये उस इस करारदाद का हमायत ना करने का जवाब बन सकता है। लेकिन बात ये है कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ कब तक होंगी? हम आलमी ज़मीर की बात करते हैं, आज एक हम कहते हैं कि एक तरक्की याफ्ता दुनिया है, जमहूरियत है, आइन है, लेकिन अगर हमारे सामने लोगों के लाशें, मासूम बच्चों के लाशें इसी तरह गिरते रहेंगे एक जबर के शक्ल में, तो ये तो कभी भी। और एक बिल्कुल यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि जब ये जुल्म इस तरह बढ़ेंगे, और ये ख़त्म तो होगा, ये आज जो केस साबित हुआ है, ये कभी
बहुत
ना
बहुत
कभी
शुक्रिया आपका सियार शमसी साहब, वक्त हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। नाज़रीन, आपने हमारे मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू को मुलाहिज़ा फरमाई, लेकिन जैसा कि हमारे सारे ही मेहमानों ने कहा कि इस्लामी मुल्कों का जो इस वक्त किरदार है वो ख़ास तौर पर अफसोसनाक है, और इसमें अगर देखा जाए तो सऊदी अरब, जिसका नाम भी लिया हमारे मेहमानों ने, उसका किरदार जंग गज़ा के दौरान जो 50 रोज़ा या 22 रोज़ा या 33 रोज़ा जो लबनान की जंग थी उसमें अगर देखा जाए तो उसमें पूरी तरह से सहयोनी हुकूमत के साथ उसका ज़ाहिर है कि उसका हिमायत थी सहयोनी हुकूमत के लिए, और अगर ये ममालिक सहयोनी हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते तो आज गज़ा के या फिलिस्तीन के मज़लूम आवाम की बेचारगी इस शक्ल में देखने को ना मिलती है। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे अली बासिज़वी और दीगर साथियों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।